इस कथन के बावजूद यदि कोई आलोचक कवि मुक्तिबोध की अक्षमता संबंधी आत्मस्वीकृतियों की अस्तित्ववादी व्याख्या करता है तो उसे साहित्य का दारोगा ही समझना चाहिए। इस वक्तव्य के आलोक में मुक्तिबोध की रचनाओं के उस मैं की अक्षमताओं को भी समझा जा सकता है जो मध्य वर्ग का सबसे संवेदनशील और जागृत व्यक्ति है, जिसे अपने अभीष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व की विशालता के सम्मुख आत्म साक्षात्कार का पीड़ा भरा बोध भी तुच्छ लगता है। आत्मसंघर्ष इसी पीड़ा की उपज है और कहने की आवश्यकता नहीं कि मुक्तिबोध के साहित्य का यह आत्मसंघर्ष अस्तित्ववादी आत्मपीड़न से भिन्न ही नहीं बल्कि उससे बहुत आगे बढ़कर मार्क्सवादी सिद्धांत और कर्म की सीमा में प्रवेश करता है। वे मार्क्सवाद के साथ रहस्यवाद के समन्वय का प्रयत्न नहीं करते बल्कि मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के द्वारा इन दोनों की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। यदि मुक्तिबोध की किसी कविता का मैं कभी मन की गुहा में बैठता है, कभी अकेलेपन की निराशा में डूबता है और कभी जनक्रांति के स्वप्न में डूबकर मुक्ति का अनुभव करता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि मुक्तिबोध रहस्यवाद और अस्तित्ववाद के साथ मार्क्सवाद के समन्वय का प्रयत्न करते हैं। सवाल पूरी कविता के कथ्य के ढांचे में इन स्थितियों के नियोजन का है और काव्यबोध की एक समग्रता का तकाजा है कि इन स्थितियों का मूल्यांकन खंडशः अलग अलग वाद के रूप में करने के बजाय उन्हें एक अखंड काव्य कथ्य के अंग के रूप में देखा जाए। इस दृष्टि से देखने पर जाहिर है कि मुक्तिबोध की रहस्यात्मक से रहस्यात्मक कविता भी रहस्यवादी नहीं है और वैयक्तिक निराशा के गहरे से गहरे अंधकार में डूबी हुई कविता भी अस्तित्ववादी नहीं है। मुक्तिबोध की संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर सारे कुहासे, अनिश्चय, संशय, एकाकीपन, बेचैनी, अपराध बोध, स्वप्न दृष्टि, आशा, आकांक्षा, दुर्बलता, दृढ़ता आदि अनेक मनःस्थितियों को अपने ताप में पिघलाकर एक वैज्ञानिक विश्वदृष्टि और मानव आस्था में ढाल देता है। मुक्तिबोध के काव्य कथ्य के इस सामान्य ढांचे को स्पष्ट करने के बाद अंधेरे में कविता को विशिष्ट कथ्य पर कहने के लिए बहुत कम बचा है। फिर भी कविता के नए प्रतिमान के अंतर्गत प्रकाशित अंधेरे में की व्याख्या पर इधर कुछ आपत्तियां की गई हैं, इसलिए इन आपत्तियों की रोशनी में उस कविता पर संक्षेप में पुनर्विचार कर लेना आवश्यक है। आपत्ति का असली मुद्दा है अस्मिता की खोज। एक व्याख्या के अनुसार कवि ने यहाँ आत्मनिर्वासित होकर अस्मिता की खोज नहीं की बल्कि आत्मसंघर्षरत रहकर अस्मिता का विकास किया है। आपत्ति यहाँ आत्मनिर्वासित पर भी है किंतु मुख्य आपत्ति खोज पर प्रतीत होती है, स्वयं अस्मिता पर नहीं। एक दूसरे व्याख्याकार को अस्मिता पर इतना गुस्सा है कि उसकी दृष्टि में मुक्तिबोध की कविताओं में अस्मिता की खोज करना और साहित्य और आलोचना दोनों की अस्मत उतारने का पर्याय बनकर रह जाता है। अस्मिता शब्द से भड़कने का एक कारण तो यह है कि मुक्तिबोध आत्मनिर्वासन से ग्रस्त व्यक्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि मुक्तिबोध को आत्मनिर्वासन से ग्रस्त व्यक्ति कहा किसने। मैंने तो यह लिखा है कि अंधेरे में का काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है। अब कोई यदि स्वयं मुक्तिबोध को ही काव्य नायक समझता है तो उसकी समझ को किसका पर्याय कहा जाए? किसी कविता के काव्य नायक मय को आत्मनिर्वासित कहने से यह अर्थ किस तरह निकलता है कि उसका कवि भी आत्मनिर्वासित है। अस्मिता और उसके साथ आत्मनिर्वासन पर आपत्ति का दूसरा अकथित कारण यह प्रतीत होता है कि मुक्तिबोध के इन नए पक्षधरों की दृष्टि में ये दोनों शब्द गैर मार्क्सवादी बुर्जुआ चिंतन के अंग हैं और इन्हें मुक्तिबोध जैसे क्रांतिकारी कवि के संदर्भ में इस्तेमाल करने के अर्थ हैं मुक्तिबोध के क्रांतिकारी कथ्य को प्रतिक्रांतिकारी रूप देना। आशंका एकदम निराधार नहीं है क्योंकि अस्मिता के लोप और आत्मनिर्वासन की चर्चा अस्तित्ववादी विचारकों और लेखकों ने भी की है और उन्होंने इसे व्यक्तिवादी तथा आत्मपरक रंग दे डाला है, किंतु केवल इसी कारण इन अवधारणाओं को नितांत अस्तित्ववादी समझना भारी भ्रम है। अस्मिता के लोप और आत्मनिर्वासन की चर्चा 1848 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि के युवा मार्क्स ने ही नहीं बल्कि पूंजी के लेखक प्रौढ़ मार्क्स ने भी की है। मार्क्स ने निसंदेह अवधारणाएं हेगल से ली थीं और हेगल के द्वंद्ववाद की तरह ही उन्होंने इन अवधारणाओं को भी उनके भाववादी खोल से मुक्त कर भौतिकवादी अर्थ से युक्त करने का प्रयास किया। इस प्रसंग में मार्क्स ने जिन दो जर्मन शब्दों का प्रयोग किया है उनके अंग्रेजी प्रतिशब्द क्रमशः एलियनेशन और रीइफिकेशन है। इन शब्दों के साथ मार्क्स ने सेल्फ एलियनेशन और लॉस ऑफ सेल्फ की भी चर्चा की है। एलियनेशन और सेल्फ एलियनेशन के लिए हिंदी में अभी तक किसी अधिक उपयुक्त शब्द के अभाव में अलगाव और आत्मनिर्वासन का प्रयोग किया जाता है। मार्क्स ने जिसे लॉस ऑफ सेल्फ कहा है वह अन्य विचारकों द्वारा प्रयुक्त लॉस ऑफ आइडेंटिटी ही है, जिसे हिंदी में अस्मिता का लोप कहा जा सकता है। रहा रीइफिकेशन, उससे हिंदी के लेखक अभी कम परिचित मालूम होते हैं। कहीं कहीं इसका हिंदी रूपांतर वस्तुकरण के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है वस्तु में रूपांतरण। रीइफिकेशन, जिस लैटिन शब्द रेस से बना है, उसका एक अर्थ संपत्ति भी है, और इसीलिए चाहे तो उसे संस्कृत रय के सहारे हिंदी में रयकरण भी कह सकते हैं। बहरहाल, मार्क्स की दृष्टि में अलगाव और रयकरण पूंजीवादी व्यवस्था के सबसे बड़े अभिशाप हैं। इसमें मजदूर अपनी उपज से ही अलग नहीं होता, बल्कि अपने आप से भी अलग हो जाता है, और इस प्रक्रिया में मानव स्वत्व के साथ ही मानव संभावनाओं से वंचित रह जाता है। मार्क्स के अनुसार इस अलगाव के से समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहता, यहाँ तक कि स्वयं पूंजीपति भी इसका शिकार होता है, और वह भी अपनी मानवीयता खोकर एक जड़ धन पशु में बदल जाता है। किंतु इसका सबसे अमानुषिक प्रभाव मजदूर पर पड़ता है। खोने की इस प्रक्रिया में वह इस हद तक सर्वहारा हो जाता है कि अंततः उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता सिवा अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों के। इस अलगाव की प्रक्रिया से मुक्त होने का उपाय मार्क्स की दृष्टि में वर्ग चेतना है, क्योंकि वर्ग चेतना के लोप से ही मजदूर वर्ग अलगाव का अनुभव करता है, जिसका दूसरा नाम मिथ्या चेतना है। मोटे तौर से इस वर्ग चेतना के लिए चार बातें आवश्यक हैं। व्यक्ति विशेष के द्वारा वर्ग की सदस्यता का बोध, व्यक्ति अपने आप को जिस वर्ग का सदस्य समझता है उस वर्ग के तात्कालिक हितों का बोध, वर्ग के हितों के को आगे बढ़ाने का संकल्प, तथा वर्ग के तात्कालिक हितों से आगे बढ़कर उसके सार्वभौम हितों के लिए आवश्यक साधनों की पहचान। वस्तुतः ये चारों बातें वर्ग चेतना के चार स्तर हैं, और कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी स्तर परस्पर संबद्ध हैं। मार्क्सवादी दृष्टि से मजदूर को तब तक वर्ग चेतन नहीं कहा जा सकता जब तक वह यह न समझ ले कि पूंजीवाद की समाप्ति में ही उसके वर्ग का वास्तविक हित है। इस बोध के अभाव में मजदूर मिथ्या चेतना का शिकार माना जाता है। इसी प्रकार मध्यवर्गीय व्यक्ति ही की वर्ग चेतना केवल इतने ही तक सीमित नहीं है कि वह अपने आप को मध्य वर्ग का सदस्य मानकर उस वर्ग के तात्कालिक हितों के लिए संघर्ष करे, बल्कि उसी सच्ची वर्ग चेतना इस बात में है कि वह मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा में ही अंततः अपने हितों की रक्षा महसूस करे, और इसके लिए पूंजीवाद के विनाश में मजदूर वर्ग का साथ दे। इस चेतना का अभाव मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए मिथ्या चेतना है। अस्मिता का लोप इस मिथ्या चेतना का ही दूसरा नाम है, और इसके विपरीत वर्ग चेतना को अस्मिता का खोज कहा जा सकता है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के प्रसंग के जब मैंने अस्मिता के लोप की चर्चा की थी तो पृष्ठभूमि में यही मार्क्सवादी धारणा थी। पहले इसकी व्याख्या नहीं की तो यह सोचकर कि मार्क्सवाद की अति सामान्य धारणा व्यापक पैमाने पर परिचित होगी। सावधानी के लिए उस समय केवल इतना ही संकेत करना काफी समझा गया था कि इसे किसी आध्यात्मिक रहस्यवादी अर्थ में न लिया जाए। लगता है कि यहाँ व्यक्तिवादी अस्तित्ववादी शब्द और जोड़ देने चाहिए थे। प्रश्न यह है कि अस्मिता की खोज मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता का मूल तथ्य है या नहीं। स्वयं मुक्तिबोध ने कविता में अस्मिता शब्द का प्रयोग नहीं किया, यह सही है, उनका अपना शब्द है अभिव्यक्ति। मुक्तिबोध ने स्पष्ट लिखा है कि वह अभिव्यक्ति खोई हुई है, और इसके साथ ही खोजता हूँ क्रिया के प्रयोग के द्वारा उन्होंने उसकी खोज का भी स्पष्ट निर्देश किया है। अंधेरे में कविता के अंतर्गत यह अभिव्यक्ति केवल शब्दाभिव्यक्ति नहीं है। पागल के आत्मोद्बोधमय गीत के बाद जब काव्य नायक कहता है व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ वही अकस्मात उसे मिलता था रात में, तो स्पष्ट ही इस प्रसंग में व्यक्तित्व ही अभिव्यक्त है। इसी प्रकार जब गुहावासी फटेहाल रक्तालोक स्नात पुरुष के संदर्भ में अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह व्यक्तित्व का अभिष्ट आदर्श रूप प्रतीत होता है। मुक्तिबोध के शब्दों में यह केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि परम अभिव्यक्ति है। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, दूसरे शब्दों में यह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की पूर्ण अवस्था है, और इस प्रकार मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव है। गांधी जी से प्राप्त शिशु जब काव्य नायक के कंधे पर आकर जोर से चीख उठता है तो काव्य नायक को फिर अभिव्यक्ति का एहसास होता है, और वह प्रसन्न होकर मन ही मन कहता है कि जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। इसी प्रकार अनुभव रक्त में डूबे हुए संकल्प की मणियों का साक्षात्कार भी एक तरह से आत्माभिव्यक्ति का ही आभास देता है। अंत में प्रायः उद्धृत की जाने वाली ये पंक्तियाँ हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, यहाँ जिस अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बात की गई है वह केवल शब्दों की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि कर्म की भी अभिव्यक्ति है। पूर्वापर संदर्भ से स्पष्ट है कि यहाँ अभिव्यक्ति से अभिप्राय कविता भी है और क्रांति भी, क्योंकि जिन मठों और गढ़ों के तोड़ने का संकल्प यहाँ किया गया है वे केवल साहित्यिक मठ और गढ़ ही नहीं है। अभिव्यक्ति के इन रूपों के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अंततः यह अभिव्यक्ति काव्य नायक के अपने व्यक्तिगत ख्यालों के दायरे से निकलकर क्रांति के लिए सन्नद्ध जनयूथ में घुल मिलकर उसके साथ एकाकार हो जाती है। इस प्रकार यह अभिव्यक्ति पूरी कविता पर आदि से अंत तक मंडराती रहती है और उसके साथ ही उसे खोजने वाले काव्य नायक की छटपटाहट भी। फिर भी अंधेरे में के व्याख्याकारों को यह अभिव्यक्ति दिखाई नहीं पड़ती तो इसलिए कि इसका स्पष्ट उल्लेख कविता के अंत में होता है। आरंभ में तो सबको पहले पहल यह गुहावासी फटेहाल रक्ता लोकसनाथ पुरुष ही दिखता है। जो हो, व्याख्या के लिए कविता का सूत्र कहीं से ही पकड़ा जा सकता है और शुरू से शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शुरू से शुरू करने के कारण जिस तरह कुछ लोग कौन मनु के अनुसंधान में दूर दूर के चक्कर लगाते दिखाई पड़ते हैं उससे लगता है कि यह शुरुआत खतरे से खाली नहीं है। इस मनु को खोजते हुए डॉक्टर राम विलास शर्मा का अतिरिक्त परंपरा प्रेमी मस्तिष्क कामायनी के मनु से जा टकराया और इस परंपरा से मुक्तिबोध को जोड़ने का ऐसा उत्साह उमड़ा कि मुक्तिबोध के इस मनु की विशिष्टता दिखाना भी भूल गए। कामायनी के मनु के नाक नक्श और हिमगिरी के उत्तुंग शिखर की छाया अंधेरे में देखकर डॉक्टर शर्मा अपनी खोज पर इतने विवल हो गए कि उन्हें आदि से अंत तक साम्य ही साम्य नजर आया। नजर नहीं आया तो यह मोटा अंतर कि कामायनी के मनु अंततः कैलाश पर जाकर समरस की साधना में लीन हो जाते हैं, जबकि अंधेरे में का मनु जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल वही फटेहाल रूप। सारा गुनाह दरअसल इस मनु शब्द का है। यदि मुक्तिबोध का मनु सामान्य मनुज नहीं बल्कि कामायनी का मनु है तो तार सप्तक में संकलित प्रभाकर माचवे के एक सॉनेट की इस पंक्ति को लेकर ही पूछा जा सकता है कि तुमने भी क्या कभी भूल से सोचा था कैसा है यह मनु। मुक्तिबोध ने कामायनी पर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, इसका यह मतलब नहीं कि वे अंधेरे में के रूप में एक दूसरा कामायनी लिख रहे थे, जैसा कि श्री सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन लिखकर अथवा दिनकर ने उर्वशी लिखकर दिखा देना चाहा। स्पष्ट है कि इस कौन मनु के प्रश्न ने अंधेरे में कविता के बारे में काफी भटकाया है। प्रीतिकर आश्चर्य का विषय है कि हिंदी की दुनिया से बाहर की पोलिश महिला सुश्री अग्नेश्का मुक्तिबोध की कहानियों के संदर्भ में इस कौन मनु प्रश्न को उठाकर भी, और संभवतः पहली बार उन्होंने ही यह प्रश्न उठाया भी, बिना इधर उधर भटके मुक्तिबोध के साहित्य के मूल तथ्य पर सीधे पहुंच गई। जुलाई सितंबर 1968 की आलोचना 6 में कहानीकार मुक्तिबोध कौन मनु शीर्षक निबंध का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए सुश्री अग्नेश्का लिखती हैं कि मुक्तिबोध की संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर सन्नाटे के दायरे को तोड़ता हुआ तेज बजता है। उदासीनता के विरुद्ध, अलगाव के विरुद्ध, मानवीयता की जलती पीड़ाओं से हमारे भीतरी अलगाव के विरुद्ध। प्रसंगवश सुश्री अग्नेश्का ने कहानियों के साथ चंबल की घाटी में और अंधेरे में दोनों कविताओं का भी उल्लेख किया है, जिनमें उक्त स्वर सबसे संपूर्ण और सशक्त रूप में प्रकट हुआ है। इस प्रकार अंधेरे में कविता का मूल तथ्य हर तरह के अलगाव के विरुद्ध है। अस्मिता की खोज इसी अलगाव विरोध का दूसरा नाम है। इस तथ्य की खोज यदि कौन मनु के रूप में की जाए तो यह ध्यान रहे कि उस मनु के अंतर्गत रक्तालोक स्नात पुरुष के साथ ही कविता का मैं भी शामिल है। मनु के इन दोनों पक्षों का अलगाव, तनाव और साक्षात्कार ही अंधेरे में कविता के कथ्य का मूलाधार है। स्वप्नगत मृत दल की शोभा यात्रा, सैनिक शासन, क्रांति स्वप्न आदि कथ्य की अर्थवत्ता को उजागर करने वाले वस्तुगत पर्यावरण है, जिनका महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जा सकता। जैसा कि मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में अपनी काव्य कथा संभवतः इस चौड़े ऊंचे टीले पर की व्याख्या करते हुए लिखा है, निसंदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता की केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। उस कविता में भी जैसे स्वप्न के भीतर स्वप्न आते हैं, उलट पुलट होकर और सिलसिला टूट जाता है, एक हद तक यह बात अंधेरे में पर भी लागू होती है। इसलिए इस कविता के परिवेश और विन्यासगत ब्यौरे की उलझन को पार करके ही मूल कथ्य का निर्धारण करना समीचीन है, और मुझे अब भी ऐसा नहीं लगता कि अंधेरे में कविता को परम अभिव्यक्ति की खोज कहकर मैंने कोई गलती की और दूसरे शब्दों में उसी को अस्मिता की खोज द्वारा स्पष्ट करके मैंने साहित्य और आलोचना की अस्मत उतारने का प्रयास किया। अंतिम सवाल यह है कि अंधेरे में की समीक्षा कविता के नए प्रतिमान के अंतर्गत परिशिष्ट में क्यों। परिशिष्ट में रखा जाना कुछ लोगों की दृष्टि में इस कविता की उपेक्षा और मुक्तिबोध का अपमान है, और कुछ लोगों को अंधेरे में कविता की समीक्षा तथा कविता के नए प्रतिमानों के बीच संगति पर ही संदेह है। परिशिष्ट सम्मान का स्थान है या अपमान का, यह मत अहिमत का विषय है। फिर भी इस प्रसंग में इतना ही कहना पर्याप्त है कि काव्य सिद्धांतों के विवेचन क्रम में एक बार अन्य लंबी कविताओं के साथ अंधेरे में पर विचार करने के बावजूद उसे और केवल उसे ही अलग से समीक्षा के लिए चुना गया तो इसका कुछ अर्थ होता है। जहां तक कविता के नए प्रतिमानों के साथ अंधेरे में की संगति दिखाने का प्रश्न है, मैं खामोश रह जाने का दोषी हूं जिसका परिहार आज आवश्यक प्रतीत हो रहा है। कविता के नए प्रतिमान की मुख्य स्थापना मेरी दृष्टि में यह है कि कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से आत्मपरक नई कविता की दुनिया से बाहर निकलकर उन कविताओं को ही विचार में की सीमा में ले आना आवश्यक है जिन्हें किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में सामान्यतः लंबी कविता कहा जाता है। काव्य संरचना प्रगीतात्मक और नाटकीय शीर्षक अध्याय के अंतर्गत इस समस्या पर विचार करते हुए लिखा है कि प्रगीत कविता कविता का पर्याय हो गई है और प्रगीत का प्रतिमान कविता का प्रतिमान हो गया है। परिणाम स्वरूप जो लंबी कविताएं इस दायरे में नहीं आती अपने आप तिरस्कृत हो गईं। इसका दंड सबसे अधिक मुक्तिबोध को भुगतना पड़ा। इस प्रकार मुक्तिबोध की लंबी कविताओं को ध्यान में रखने के कारण ही मुझे कविता के नए प्रतिमान की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रसंग में मैंने मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी से यह विवरण लेकर यह दिखाना चाहा कि स्वयं कवि मुक्तिबोध भी कविता के मूल्यांकन के लिए नए प्रतिमानों की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। मुक्तिबोध का उद्धरण इस प्रकार है। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा, यदि उसे व्याख्या कहें तो, केवल कविता और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाट से और इस शान से बनाई जाती है मानो वे सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्थापनाएं हों। अगर साहित्य की सौंदर्य मीमांसा करनी हो तो आपको दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए। इस प्रसंग में स्वभावतः मुक्तिबोध ने अपनी लंबी कविताओं का जिक्र नहीं किया, किंतु प्रसंग से स्पष्ट है कि वे नई कविता के अंतर्गत लिखी जाने वाली आत्मपरक कविता तथा उस पर निर्मित सौंदर्य शास्त्र से असंतुष्ट थे और इस सीमित दायरे से बाहर निकलकर काव्य के प्रतिमान निर्मित करने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। दरअसल आत्मपरक प्रगीत बनाम वस्तुपरक लंबी कविता के संघर्ष के मूल में केवल काव्य रूपों के वर्ण की समस्या नहीं है, बल्कि इसका संबंध पूरी कविता की बनावट संबंधी दो भिन्न दृष्टियों से है जिनके अंतर्गत भावबोध से भाषा तक के सभी स्तर शामिल हैं। इस संदर्भ में मैंने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि इधर नई कविता के अंदर जो आत्मपरक छोटी या बड़ी कविताएँ लिखी गई हैं वे अपने रचयिताओं की गैर रोमांटिक घोषणाओं के बावजूद मूलतः रोमांटिक हैं, और एक औसत रोमांटिक प्रगीत के समान ही इनमें भी व्यक्तिकता, आत्मपरकता, अनुभूतियों की जटिलता के अभाव के साथ ही बिंबमयता और एक खास काट की रोमांटिक काव्य भाषा के प्रयोग प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन कविताओं में वस्तु जगत की समझदारी के स्थान पर केवल अनुभूति की ईमानदारी का आग्रह किया जाता है। इन कविताओं पर निर्मित काव्य सिद्धांत की एकांगिक और अपर्याप्तता दिखाने के लिए ही मुझे वैयक्तिक और आत्मपरक छायावादी संस्कारों का विरोध करना पड़ा। इसके विपरीत मुक्तिबोध की लंबी कविताओं के रूप में मैंने काव्य के उन मूल्यों पर बल दिया जो अपनी दृष्टि में सामाजिक और वस्तुपरक हैं और आज के ज्वलंत एवं जटिल यथार्थ को अधिक से अधिक समेटने के प्रयास में कविता को व्यापक रूप में नाट्य विन्यास प्रदान कर रहे हैं, और इस तरह तथाकथित बिंबवादी काव्य भाषा के दायरे को तोड़कर सपाट बयानी आदि अन्य क्षेत्रों में कदम रखने का साहस दिखा रहे हैं। आत्मसंघर्ष से उत्पन्न तनाव, जटिलता, विसंगति, विडंबना आदि काव्य मूल्यों की स्वीकृति इस काव्य सिद्धांत के अंतर्गत स्वतः स्थान पा जाते हैं। इस काव्य सिद्धांत का ढांचा खड़ा करते समय निश्चय ही मेरे सामने प्रधानतः मुक्तिबोध की वे कविताएं रही हैं जिनके बारे में कवि ने कुछ खींचते से स्वर में एक जगह कहा है, मेरी ये कविताएं भयानक हिडिम्बा हैं, वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएं, विकृताकृति बिंबा हैं। इसके साथ ही मेरे ध्यान में मुक्तिबोध का कविता संबंधी यह वक्तव्य भी है कि आज तो पोस्टर ही कविता है, और फिर यह कथन भी कि नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती। मुक्तिबोध वस्तुतः कल होने वाली घटनाओं की कविता ही नहीं लिख रहे थे बल्कि उस कविता के भावी काव्य सिद्धांत के सूत्र भी फेंक रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि कविता के नए प्रतिमान में ये बातें कितनी उभर सकी हैं। यह विडंबना अवश्य देखता हूँ कि जिस व्यक्ति परक आत्मपरक काव्य सिद्धांत का खंडन कविता के नए प्रतिमान में आद्यंत अनुस्यूत है उसी का मुझे समर्थक बताया जाता है। इसे दृष्टिदोष कहने की अपेक्षा अपनी वाणी की दीनता चिन्ह कर चुप रह जाना ही श्रेयस्कर है। कविता के इस प्रतिमान के संदर्भ में अंधेरे में की समीक्षा की यही संगति है कि यह कविता मुक्तिबोध की परम अभिव्यक्ति के साथ ही उत्तम मूल्यों की मूर्तिमान काव्य प्रतिमा है। इस कविता के अंतर्गत मुक्तिबोध ने प्रसंगत कविता संबंधी अपनी आकांक्षा का भी संकेत दे दिया है। जब वे कहते हैं कि अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, तो वे स्पष्टतः उस आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि को तिरस्कृत कर रहे हैं जिसमें काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा है। इसके बदले वे कविता के अंदर मस्तक कुंड में जलती सतचित वेदना सच्चाई व गलती मस्तिष्क शिराओं में तनाव दिन रात को लाने का हौसला रखते हैं और इसके लिए अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने का भी संकल्प करते हैं। यहाँ अंधेरे में कविता में व्यक्त उस रोमांटिक आशा से भरे स्वप्न को अनदेखा करना समीचीन न होगा जिसके लिए कुछ लोगों ने मुक्तिबोध पर रोमांटिक होने का आरोप लगाया है। इस विषय में अपनी बात कहने से पहले स्वयं मुक्तिबोध का मत उद्धृत करना अधिक संगत है। एक साहित्यिक की डायरी के अंतिम अध्याय में अंग्रेजी के कवि शेले की रोमांटिक दृष्टि का समर्थन करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि दृष्टि रोमांटिक होने मात्र से भावना का ज्ञानात्मक आधार कमजोर नहीं होता। ज्ञानात्मक आधार कमजोर तब होता है जब कवि समाज को प्राप्त अद्यतन ज्ञान की उपेक्षा कर अद्यतन ज्ञान द्वारा संप्रेरित भावनाओं से दूर हटकर केवल अपने एकांतिक निवरलोक में ही विचरण करता है। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है वरन समाज के उत्थानशील तथा ह्रासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। शेले के काव्य का सौंदर्य उस मनोभूमिका से उत्पन्न हुआ है जो अपने युग में विकासमान उत्थानशील प्रवृत्तियों से परिपक्व हुई है। शेले को ज्ञान ने स्वप्न दिया, स्वप्न ने भावना दी, उसका समस्त साहित्य इस मनोभूमिका से अनुरंजित है। इसके विपरीत रोमांटिक लेखकों और कवियों का एक और वर्ग भी है जिसमें मुक्तिबोध के अनुसार छद्म भावनाएं देखने को मिलेंगी। मुक्तिबोध ने इस प्रसंग में स्पष्ट लिखा है कि हिंदी के रोमांटिक कवियों में ऐसी छद्म भावनाएं बहुत देखने को मिलेंगी। निश्चय ही हिंदी के रोमांटिक कवियों में मुक्तिबोध की मुराद छायावाद के सभी कवियों से नहीं बल्कि उन कवियों से है जो या तो छद्म छायावादी हैं या छद्म भावनाओं के शिकार रोमांटिक हैं। कविता के नए प्रतिमान के अंतर्गत ऐसे ही छद्म छायावादियों और छद्म भावनाओं के शिकार रोमांटिक कवियों का विरोध किया गया है। सभी रोमांटिक कवियों या रोमांटिक कविता मात्र का नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं कि अंधेरे में जो रोमांटिक स्वप्न है उसका आधार अपने युग में विकासमान उत्थानशील शक्तियों का बोध है। कविता के अंतिम भाग में यही उत्थानशील शक्तियाँ क्रांति के लिए सन्नद्ध दिखाई पड़ती हैं। इस स्वप्न का रंग उस दुःस्वप्न के कारण और भी निखर उठता है जिसके मूल में ह्रासोन्मुख शक्तियों के मृत दल की शोभा यात्रा है। स्पष्टतः मुक्तिबोध के स्वप्न में शेले की सी कुहरिलता नहीं है बल्कि उसमें समाज की उत्थानशील शक्तियों के अनुरूप ही भावना तत्व विचार तत्व से समानतः दीप्त है। इसके बावजूद यदि किसी को यह स्वप्न कुहरिल दिखाई पड़े तो यही समझना चाहिए कि ह्रासोन्मुख शक्तियों के आतंक के कारण उसकी आंखें चौंधियाई हुई हैं और उसे उत्थानशील शक्तियों के उभार का पूरा पूरा एहसास नहीं है। इस दृष्टि से मुक्तिबोध को रोमांटिक भी कहा जा सकता है किंतु यह रोमांटिकता गोर्की के शब्दों में क्रांतिकारी रोमांटिकता या विरक्त व्यंजक रोमांटिकता है। निबंध समाप्त।